أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وإطراته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولا الخصوص مولانا ومقتدانا أسد الله ويد الله وسيف الله وباب الله وولي الله وعين الله ولسان الله وحجة الله والمخلص لله ووصي رسول أخي الرسول وزوجة البتول إنسان الكامل إمام العادل حيدر الكرار صاحب الذوالفقار إمام الأبرار أفضل المسلمين يعسوب الدين إمام المتقين مولى الموحدين مولى المتقين إمام العادلين إمام العارفين عاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب على كل غالب صلوات الله وسلامه عليه. تیرہ رجب ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح کے موضوع کے اوپر ڈسکس کیا جائے اور گفتگو کی جائے اور اس جشن میں شرکت کی جو ہے سعادت پائی جائے، تو میرے ذہن میں آیا کہ کچھ امام عالی مقام کے کچھ فضائل و مناقب اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی ولادت کے حوالے سے جو ہمارے پاس روایات ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے اور کچھ متفرقہ جو ہے پہلو کی طرف جو ہے بیان کیا جائے، کیونکہ مرکزی موضوع مولا الموحدین امیر المومنین مولود کعبہ ہیں، تو متفرقہ جو امور ہیں اس کو سامنے رکھ کے مختلف قسم کے پہلو کو، اور وقت بچتا ہے تو آخر میں آپ کے حیات اور سیرت طیب و طاہر سے جو ہے کچھ اگزامپلز پیش کیے جائیں جو ہماری آج کی زندگی کے لیے عملی طور پر ضروری ہوں انشاءاللہ. تو امام عالی مقام، معلوم ہے کہ امام عالی مقام کی اس قرۂ خاکی میں جو ولادت ہوئی وہ 13 رجب 37 عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال کے یا ہاتھی والے واقعے کے جو کعبے کو گھرانے کے لیے آیا تھا اس واقعے کے 30 سال کے بعد یعنی بعثت پیغمبر گرامی اسلام سے 10 سال پہلے. اہل سنت اور شیعہ علماء کے ایک بڑے اور متفقہ گروہ کے مطابق خانہ خدا میں، خانہ یہی موجودہ خانہ کعبہ جو اس وقت ہے ہمارے پاس، اسی خانہ خدا اور خانہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، جو کہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اور منفرد واقعہ ہے اور یہ صرف ایک بار ہی ہوا ہے، اور نہ اس سے پہلے جب سے کعبے کی بنیاد جناب ابراہیم نے رکھی تب سے لے کر آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، صرف یہ اکیلا واقعہ ہے، اور قیامت تک کوئی پاسبلٹی بھی نظر نہیں آتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کسی کی ولادت ہو جائے. اچھا، جو متعلق روایات ہمارے پاس ہیں ان میں سے ایک روایت کا ایک حصہ میں بیان کرنا چاہوں گا. والدہ ماجدہ مولا الموحدین امیر المومنین علیہ السلام فرماتی ہیں کہ خانہ خدا کے میں قریب تھی اور اس وقت جو ہے اچانک جو ہے درد جو زچگی کے وقت ہوتی ہے وہ تکلیف مجھے ہوئی، اور کافی سخت تکلیف ہوتی ہے یہ، اسی لیے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماؤں کا ایک مقام ہے، اور بعض دعاؤں میں اور بعض ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ماں کی بس صرف اتنا ہی احسان کافی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کرتے وقت درد زچگی کو برداشت کیا اور سہا ہے. تو وہ گھڑی آئی اور خدا متعال کو مخاطب ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، اور اپنے عقیدے کو بیان کیا کہ میں نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں نے حضرت ابراہیم پر ایمان رکھا ہوا ہے، آپ کی بھیجی گئی کتابوں پر میرا ایمان ہے، اور میں شدید تکلیف میں ہوں، اے میرے پروردگار اس وقت میری مدد فرما. لہٰذا جو ہے وہ ہو سکتا تھا کہ دروازہ کھل جاتا، دروازہ کھلنے کے بجائے جہاں پر آپ کھڑی تھی وہیں پر دیوار شق ہوتی ہے اور آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں. اچھا، اب اندر کعبے کے اندر کیا ہوتا رہا، آپ کعبے میں کہاں تشریف رکھتی ہیں، انشاءاللہ ہم آگے کی گفتگو میں خود مولائے کائنات کی زبانی اس مسئلے کو انشاءاللہ کی ہم سمجھیں گے اور معلوم ہوگا کہ خانہ خدا کے اندر تین دن کیا ہوتا رہا ہے. اور تین دن کے بعد اب یہ جو انہونا واقعہ ہوا, وہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مشرکین بھی تھے اور اس وقت کے توحید پرست یا مسلمان بھی تھے, اس وقت کے یعنی جو دیگر انبیاء پہ ایمان رکھنے والے. آپس میں بڑی باتیں ہونے لگی اور یہ بات کافی باہر پھیل گئی کہ بھائی ایک انہونا واقعہ ہوا ہے, اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے اور فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ خانہ کعبے کے اندر ہیں وغیرہ وغیرہ. اب تین دن کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا سے باہر تشریف لاتی ہیں تو اس وقت جو واقعہ ہوئے ہیں, میں صرف اسی حصے کو روایت کے, میں صرف باقی کا خلاصہ بیان کیا, اصل حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. فرماتی ہیں, فلما اردت ان اخرج حتف بی حاتفا, جب میں خانہ خدا سے نکلنے لگی تھی تو حتف بہ حاتفا, ایک ندا دینے والے نے ندا دی مجھے, یا فاطمہ, اے فاطمہ, سمیہ علی, اس کا نام جو ہے علی رکھا گیا ہے, فہوا علی علی واللہ, خدا کی قسم کی یہ بہت ہی بلند ہستی ہے. یہاں اگلی دفعہ جب علی کا لفظ ہے وہ علی بلندی کے معنی میں آیا ہے, عظمت کو بیان کرنے کے لیے. پھر فرمایا العلی الاعلی یقول, العلی الاعلی فرماتے ہیں, انی شققت اسمہ من اسمی, میں شققت کے اوپر فوکس نہیں کروں گا کیونکہ اس کے لیے ٹائم چاہیے اور تھوڑی سی اس سے پہلے کچھ بحث کی ضرورت ہے, اس لیے میں سمپل ترجمہ کروں گا, انی شققت اسمہ من اسمی وادبتہ بادبی, میں نے جو ہے مولائے کائنات کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے, وادبتہ بادبی, اور میں نے جو ہے اپنی جو خو ہے, اپنا جو بیہیویئر ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, اخلاق ہے, رویہ ہے, برتاؤ ہے, ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہیں, وہ جو ہے میں نے جو ہے عطا کی ہیں. وقفتہ علی غامض علمی, اور جو ہے علم عطا کیا ہے, میں نے اپنا علم عطا کیا ہے, وہو الذی یعظن فوق دحر بیتی, وہ میرے خانے یعنی میرے گھر یعنی خانہ کعبے کے اوپر اذان دیں گے, یعنی لوگوں کو بلائیں گے, اکٹھا کریں گے میری جانب, ویقدسنی ویمجدنی فطوبی لمن احب واہا واطاع ویل لمن ابغض واساء, سلام ہو اس پر جو اس کی اطاعت کرے, اس سے محبت رکھے, اور ویل ہو اس کے لیے, تباہی ہو اس کے لیے جو اس سے بغض رکھے اور اس کی مخالفت کرے. یہ ولادت کا جو آپ, کیونکہ آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے تو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, یہ جو ہے مختصراً ولادت کے دوران کے واقعات ہیں کہ حاطف کس طرح جناب فاطمہ بنت اسد سے مخاطب ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی منی وانا من علی, میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس جملے کا, یہ کس وقت ارشاد فرمایا, کوئی اس کی شان نزول ہے یا ایسے ہی فرمایا, کوئی واقعہ تھا؟ جی, واقعہ ہوا تھا جس وقت سورہ توبہ یا سورہ براءت کو مشرکین کے سامنے جا کر پڑھنا تھا. روٹین کے مطابق جب یہ حکم آیا کہ مشرکین کے سامنے جا کر آپ اس سورہ کی تلاوت فرمائیں, تو روٹین کے مطابق جو ہے نارمل طریقے سے حضور پاک نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے یہ سورہ جو ہے مشرکین کے سامنے پڑھ کے آ جاؤ. ابھی وہ شخص جا رہا تھا کہ پھر سے فرشتہ نازل ہوا, فرمایا حکم الہی یہ ہے کہ یا تو آپ خود جا کر پڑھیں گے یا پھر کوئی آپ میں سے پڑھے گا, آپ میں سے نہیں کہ وہاں جو گیدرنگ بیٹھی ہوئی ہے اس میں سے, یعنی خود آپ کے قریبیوں میں سے ہو, آپ کا حصہ ہو, آپ کی فیملی میں بھی ہر کسی کو نہیں لے سکتے ہیں, فیملی کے بھی اسپیسیفک جو فیملی ممبرز ہیں وہ جا کر پڑھیں گے. ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے اسپیسیفک فیملی ممبر سے مراد کیا آپ جانتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ہم ٹیکنیکلی بھی بات کریں گے. فرمایا لا لا یؤتی انک الا انت و رجلا منک, کا یہ سورہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا جا کر, یا آپ پڑھیں گے, یا رجل منک, یا آپ میں سے کوئی ہو جو جا کر پڑھے گا. उस वक्त हुजूर पाक ने यह जुमला इरशाद फरमाया, अली मिन्नी वाना मिन अली, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। खूब, ये जो मैं अली से हूँ और अली मुझसे है यानी चचाजात रिश्तेदारी है, मेरा दामाद होगा इस वजह से है, ये असल में मुझसे है और मैं अली से हूँ, नसबी नसब के एतबार से, रिश्ते के एतबार से और सबब के एतबार से, सबब यानी दामाद होने की वजह से, ये न दामाद होने का सबब है न चचाजाद होने का या एक ही ब्लड से ताल्लुक रखने का नसब है, ये दोनों नहीं है, बल्कि असल में यहाँ पर रिश्ता कौन सा है, वो रिश्ता है खुदाई और मलकूती। खुदाई और मलकूती क्या है? विलाई रिश्ता है। विलाई रिश्ता क्या है? एक ही नूर से हैं, एक ही खिलकत रखते हैं, एक ही वजूद रखते हैं, आलम इम्कान और आलम अर्ज में तशरीफ लाए, दो वजूद में बट गए, हदीसे मारूफ हदीसें हैं कि जिसमें से एक नबुव्वत का वजूद बना, दूसरा इमामत और विलायत के का वजूद बना, इसीलिए मौला को अबुल आइम्मा कहते हैं, ये तमाम आइम्मा के वालिद। आगाज विलायत कहाँ से शुरू होती है? मौला अल मुआहिदीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। ये जो इसकी और भी दलीलें हैं हमारे पास कि आपने फरमाया यहाँ पर नसबी और सबबी रिश्ता मुराद नहीं है बल्कि विलाई व नबुवती रिश्ता मुराद है। एक और वाकया है, वो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के भाई हैं, अब्दुल्लाह अफ्ता, यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक और बेटा, दूसरा बेटा है। अब्दुल्लाह अफ्ता ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम पर एतराज किया, यानी एतराज की असल में जुरअत की है, गुस्ताखी की तकरीबन, कहा कि देखें मेरा भाई मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम और मैं तो बराबर हैं। खूब, बराबरी क्या है जनाब आपकी? हमारे वालिद एक हैं, हमारे दादा एक हैं और मैं भी आपका बेटा हूँ, वो भी मूसा काजिम अलैहिस्सलाम भी आपका बेटा है, हम एक ही, कोई फर्क तो नहीं हमारे दरमियान, फिर आप मेरे भाई मूसा को मुझ पर आप तरजीह क्यों देते हैं? हमेशा उसको मुझ पर ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, मुझ पर थोड़ी सी आपकी वो दिलचस्पी और वो इनायत और वो जो आपका तरीका है जो मेरे भाई के लिए है वो मेरे लिए नहीं है, हकीकत इक्वल है। अच्छा, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें भी हिदायत दी है, औलाद में फर्क ना करो, लेकिन बाज जगहों में फर्क की बात नहीं हो रही है, तर्जीह की बात हो रही है, यानी फर्क वहां पे होता ना जब हुकूक गसब हो जाए, औलाद में से किसी का हक मारा जाए बाप की तरफ से, लेकिन तर्जीह एक और चीज होती है। मसलन एक बेटा नमाजी है, एक बेटा परहेजगार है, एक बेटा दीनदार है, जाहिर है वो तरजीह रखता है बहुत से उमूर में शरी लिहाज से भी। तो यहाँ इमाम अब क्या जवाब इरशाद फरमाते हैं? इमाम का जवाब जाहिर है इमाम अलैहि सलाम फरमाते हैं, कैफा अलैसा अभी व अबू वाहिदन। ये अब्दुल्लाह अफ्ता का एतराज है कि ये कैसी भाई, मैं और इसके जो है बाप और जो है दादा एक ही हैं, उसली व असलहू व असली वाहिदन, मैं और उसकी असलियत तो एक ही है, जनरेशन बाय जेनेटिकली सब तो हम एक ही हैं। फ़क़ाल लहु अबू अब्दुल्लाह अलैहि सलाम, उस वक़्त इमाम सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया, गौर से सुनो, इन्नहु मिन नफ्सी, ये मेरी जान है, यानी वो उर्दू वाली जान नहीं, ये मेरी नफ्स है, व अंत इब्नी, तुम मेरे बेटे हो। अब समझ में आ रहे हैं फर्क क्या है, जब वहां अली मिन्नी व अना मिन अली, हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, रिश्ते बयान नहीं हो रहे हैं, सबब और नसब नहीं है, यहाँ बयान नहीं हो रहा है। क्या फरमाया इमाम ने? फरमाया इन्नहु मिन नफ्सी, ये मेरे नफ्स हैं, अंत इब्नी, तुम मेरे जेनेटिकली, तुम मेरे क्या है बायोलॉजिकली, तुम मेरे बेटे हो, ने तुम मेरे बेटे हो नस्ली तौर पर, लेकिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम यानी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम मेरी जान है, मेरी रूह है, सिलसिले इमामत व विलायत से ताल्लुक रखता है, ये नसब व हसब से बढ़कर कोई बात हो रही है, यानी इसकी विलादत में मेरी विलायत व इमामत की तजल्ली है, बेटा होना और है लेकिन मकाम व ओहदे का और इमामत व विलायत का वारिस होना एक ही इमाम की मुतादिद औलादों के दरमियान और है, ये बात इमाम असल में समझाना चाह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये इलाही ओहदे हैं। जनाब इब्राहिम ने भी कहा था इमामत मेरी खानदान में भी रखोगे, फरमाया इब्राहिम तुम्हारी खानदान में अगर कोई लायक नहीं होगा ना, जालिम होगा, लायक नहीं होगा, उसे नहीं मिलने वाली है। मत समझना यहाँ पे रिश्ते और खूनी ब्लड के ताल्लुक की वजह से कुछ फजीलतें मिलने वाली है, नहीं। करेक्टर नहीं होगा ठीक तो ला याना लुहदिस जालिमिन, उसको तो नहीं मिलने वाला है। नबियों के बेटों को हमने किक आउट कर दिया है, बाहर निकाल दिया करेक्टर खराब होने की वजह से। तो बी अलर्ट प्लीज, इमाम ज्यादा होने से बचत होना मुमकिन नहीं है, करेक्टर भी साथ साथ ठीक रखना, इमाम असल में ये समझाना चाहते हैं। खूब ज्यारत जामिया की तरफ बढ़ते हैं, एक और जो है अहम पॉइंट इसी से इंतजाम होगा, फिर अगले उस फजीलत की तरफ जाएंगे। ज्यारत जामिया के अंदर भी ये इरशाद हुआ, वल अमानत महफूजतुन, यानी इमामत और विलायत एक इलाही अमानत है जिसकी खुदा खुद हिफाजत करता है। कुरान मजीद ने कुरान सामित के बारे में गारंटी दिया है कि हम खुद हिफाजत करेंगे, नहनु नज़र नज़िकर व नहनु लहू लहाफिज़ून। फरमाया इमामत और विलायत भी ऐसा है कि इसकी हिफाजत क्या करते हैं, हम खुद करते हैं। इसीलिए अल्लामा मजलिसी ने ये नकल किया है कि इमामत और विलायत के हवाले से ये जो अल अमानत महफूजतुन है, इसके ज़िमन में फरमाते हैं अल्लामा मजलिसी ने नकल किया है कि ये अइमा अलैहिस्सलाम के पास विलायत और अमानत इमामत की कुछ मखसूस मलकूती चीज़ें होती थी कि मैं और आप नहीं समझेंगे। कोई बक्सा नहीं होता था कि मुमकिन है कि लोग इस तरह की ले लें, कोई किताब नहीं, कोई कुछ कुछ तो है हाँ, वो हमें नहीं पता क्या है। वो एक इमाम दूसरे इमाम के हवाले करते थे। कुरान मजीद ने भी ताकीद की है ना, कुरान मजीद भी फरमाता इन्नल्लाह यामुरुकुम, अल्लाह ताला आप लोगों को हुक्म देता है अंतुअद्दु अमानाती ला अहलिहा, अमानतों को उसके लायक की तरफ लौटा देना, उसके हकदार की तरफ लौटा देना। खूब मैं और आपके लिए कुरान का ये हुक्म नॉर्मल अमानतें हैं, उसने 100 यूरो मेरे पास रखा था, उसने गाड़ी की चाबी रखी थी, ये अमानतें इस टाइप की अमानतें हैं, या किसी की औलाद की कोई जिम्मेदारी थी या वगैरह वगैरह, या मियाँ बीवी हैं तो इस तरह की हैं। लेकिन जब यही आयत अइम्मा के लिए इस्तेमाल होगी, एक इमाम दूसरे इमाम से जब ये फरमाएंगे तो उस वक्त कौन सी अमानतें होंगी? वो अमानत जो इमामत व विलायत की अमानत है, जिसे उसकी अहल की तरफ ले जाना है। मुमकिन है एक इमाम के 8 बेटे हों, 10 बेटे हों, 14 बेटे हों, 20 हों, लेकिन उसमें से अहल को लौटाना है इमाम ने। अब समझ में आ रहा है कि ये मिन्नी का बस क्या है, बस यहाँ क्या है, रसूलुल्लाह के सबबी व नसबी रिश्तेदार होना और है। हो सकता है बहुत सी बीवियां सबबी रिश्तेदार हैं हुजूर पाक की, लेकिन रिसालत की तजल्ली किसी में जाहिर होना और है। इसीलिए जनाब अबू जर से और सलमान से ये रिवायत है कि कह रहे हैं कि मस्जिद नबवी में आगाज इस्लाम में मदीने के अंदर हम बैठे हुए थे, और शुरू में जो है छत नहीं थी मस्जिद की, और इर्द गिर्द के जो घर हैं वो इजीली एक्सेस करते थे मस्जिद के अंदर आसानी के साथ, कोई फलांग के भी आता था, कोई ऐसे भी आता था, और मस्जिद में बैठे रहते थे, एक बैठते थे, बातें करते थे, काफी देर वहाँ टाइम स्पेंड करते थे अपना। बाद औकात एक घर से दूसरे घर में जाते हुए मस्जिद से क्रॉस करते थे, मस्जिद से गुजर के उस तरफ जाना मस्जिद से, क्योंकि सब ने सराउंड में घर बनाया था, मस्जिद के इर्द गिर्द घर बनाया था, तो मस्जिद को गुजरगाह भी बन जाती थी। फरमाते हैं कि हम सब मस्जिद नबवी में थे, और मस्जिद में और भी बड़ी शख्सियात बैठी हुई थी, मौलाए कायनात मस्जिद में थे, अबू बकर और उमर भी मस्जिद में बैठे हुए थे। उस वक्त जाहिर है ये लोग पॉपुलर थे इस्लाम के फ्रंट पे और हलावल दस्ते में बहरहाल दिखते थे, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग थे। रात को और भी एक बड़ी शख्सियत थी कि उसका नाम मैं लूंगा आगे। रात को अचानक, रात का वक्त था कि अचानक फरिश्ते का नुजूल हुआ और हुक्म आया कि आले रसूल के अलावा सब मस्जिद से निकल जाएं, ये तुम्हारा घर नहीं है कि दिन रात यहीं पर डेरे लगा के बैठ जाओ मस्जिद के अंदर, आप ऐसा करें कि मस्जिद को खाली करें, सब लोग चले जाएं। सारे उठ गए, मस्जिद को खाली करके चले गए। इसमें एक बड़ी शख्सियत थी, वो कौन शख्सियत है? उस वक्त के सैयदुश्शोहदा पैगंबर इस्लाम के चचा हजरत हमजा अलैहिस्सलाम। सुबह हो गई, सुबह तो लौट के आए मस्जिद की तरफ सारे के सारे, तो जिनाब हमजा भी तशरीफ लाए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह अखरजतना व अस्कनत हाजल गुलाम, या रसूल अल्लाह रात तो अल्लाह का हुक्म है, आपने हम सबको निकाल दिया, लेकिन इस जवान को, मौला अली की तरफ इशारा किया, कहा लेकिन इस जवान को आपने बिठा दिया अपने साथ मस्जिद में, क्योंकि आपके अलावा सबने निकलना था, आप और आपकी आल के अलावा, तो आपने इस जवान को भी उठा दिया। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त फरमाया, मैंने तुम्हें जाने का नहीं कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि सबको निकाल दिया जाए, मेरा हुक्म नहीं था, और अल्लाह ने ही फरमाया था कि अली के अलावा सबको कहो मस्जिद से निकल जाए, यानी मस्जिद अली के लिए घर की तरह है, जैसे चाहे रहे, क्योंकि अली की पैदाइश ही अल्लाह के घर में हुई है और कल शहादत भी अल्लाह के घर से ही होगी, यानी वो ऐसा अल्लाह वाला है जो अल्लाह के घर में आया है, अल्लाह के घर से वापस लौटेगा, क्योंकि वो अल्लाह वाला है। आप जानते हैं और बारहा सुना है, हजरत मरियम को बेतुल मकदस से जाने का कहा था, बाउंड्री में भी इजाजत नहीं थी, जनाब फातिमा बिनते असद को कहा कि आप खाने खुदा के अंदर चले जाएं, और इसलिए कि खाने खुदा में खुदा की सिफाते औलिया का जिसमें जहूर होना है, और ये जहूर भी कामिल व अकमल व अतम की शक्ल में तजल्ली करना है, उसकी विलादत का वक्त आया था। जो सिफाते इलाहिया के कमाल तजल्ली का हामिल हो, कि यहाँ तक कि खुदा नाम में भी सिमिलरिटी चाहता हो, जैसे कि इस रिवायत में शुरू में मैंने अर्ज किया, उसका जहूर जब हो रहा हो, खुदा की सिफात को लेकर वो इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हों, तो वो खाने खुदा के अंदर ही आ सकता है, और तत्हीर के मरकज के तौर पर दुआए नुतबा में भी हम पढ़ते हैं, सद्दल अबवाब इल्ला बाबहू। अच्छा, मौलाए कायनात ने, शाम वाले ने एक खत लिखा, मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा उसका, तो आप समझ जाएं, विलादत की रात है, मैं तो आज चाहूंगा ही नहीं उसका नाम ले लूं, गलती से मुंह से निकला तो निकला। शाम वाले ने एक खत लिखा, और उस खत में अपनी बड़ी बड़ाइयां की, और ऐसा तो वैसा, तो मेरी खानदान के ऐसे थे तो वैसे थे, ये बड़ाई इनके पास क्या होती थी, मेरे खानदान के इतने घोड़े थे, मेरी खानदान इतनी बड़ी थी, इतने मर्द थे, हमने शुरू शुरू में हम कौम के वडेरे रहे, हमने चौधराहट की, यही होती थी इनके पास फजीलतें, कोई और इनके नजदीक तो यही मयारात थे ना। आज भी कुछ लोगों की मेंटेलिटी शान और शौकत और अजमत और फजीलत में इसी चीजों में गिनी जाती है ना, अनफॉर्चुनेटली ये मेंटेलिटी है आज भी हमारी सोसाइटीज में, तो वो यही गिनते थे। तो मौलाए कायनात ने एक मुख्तसर जुमला जवाब में लिखा, अब ये जुमला बहुत अजीम है, जाहिर है इसकी पूरी तशरीह अभी फिलहाल नहीं हो सकती, हो सकता है खुदा ने तौफीक दी तो 19 को जब डबलिन आइलैंड में खुदा ने तौफीक दिया आया, तो हो सकता है वहां अगर माहौल और हालात ने साथ दिए और खुदा के अमर हो, तो इसकी जरा डीपली तशरीह में चले जाएंगे। जब जो है लिखा, तो मौलाना एक जुमला इस खत के अंदर इशातुर में लिखा, फइन्ना सनाया रब्बिना वन्नासु बादु सनायउन लना। देखें, गौर से सुनो, तुम जो अपनी बड़ाइयां दिखा रहे हो तो गौर से सुनो, हम हैं खुदा के बराह रास बने हुए, इन्हें खुदा ने बराह रास्त हमें बन संवारा है, और लोग हमारे हाथों बन सवर जाते हैं, उनकी शख्सियत बनती है। फइन्ना, मैंने तर्जुमे में खयानत नहीं की है, लेकिन तर्जुमे को आसान और इस वक्त की जरूरत के मुताबिक किया है, एक्चुअल तर्जुमा मैं दावा नहीं करता मैंने किया। फइन्ना सनाए और रब्बिना वन्नासु, यह नाजुल बलागा में, नाजुल बलागा के अंदर है, मैं आपको मालूम है मैं ज़ईफ़ रिवायत हो तो भी एहतियात से पढ़ता हूँ, उसके मददगार रिवायत न मिले तो मैं उस रिवायत को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हमारे पास रिवायतों की कमी नहीं है। फइन्ना सनाया रब्बिना, हम बराह रास्त खुदा के बनाए हुए हैं, वन्नासु बादु सनाया लना, और लोग हमारे हाथों से लोगों की शख्सियत बनती है, तामीर बनती है, जब हमसे जुड़ते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी बनती है, उनकी फजीलतें का आगाज तब होता है जब उनकी अटैचमेंट हमारे साथ होती है, जब वो हम पर एतकाद रखते हैं, हम हमारे बताए हुए पर चलते हैं, हमारी सीरत पर चलते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी निखर कर आती है। लिहाजा हम खुदा के डायरेक्ट बनाए हुए हैं, लोग हमारे हाथों बनाए हुए हैं। असल तर्जुमा यह है कि हमें खुदा ने बराह रास बनाया है और लोग हमारे हाथों बने हुए हैं। जो कुछ हम हासिल करते हैं वो खुदा के मकतब व मदरसे से हासिल करते हैं। जो कुछ हमने सीखा है वो खुदा से बराह रास्त लिया है, बराह रास्त वही के जरिए, इल्हाम के जरिए से, और उसके बाद लोग हैं जो हमसे लेते हैं, क्योंकि वो बराह रास्त खुदा से नहीं ले सकते। इसलिए हम अल्लाह के फैज का वास्ता हैं। शब कदर हो या शब बरात हो, 15 शाबान हो या 13 रजब हो या 3 शाबान हो, हम वास्ते फैज इलाही हैं। फैज इलाही हमारे अलावा किसी और चैनल से और रास्ते से पॉसिबल नहीं है जमीन में आए, क्योंकि जमीन में फैज इलाही को लेने वाला कोई नहीं है। इमाम जमाना न हो तो शब कदर की बरकतों बरकतें बेमानी हो जाएं। शब बरात की या शब 15 शाबान की नुजूल रहमत इलाही असलन मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये रहमत इलाही कौन ले सकता है? इमाम जमान जो कि वासिते फैज इलाहिया है, लोगों के मुकद्दरात इमाम के पास आते हैं, इमाम आदिलाना तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसीलिए फरमाया कि इमाम जमाना को याद रखो, जमाने के इमाम को याद रखो, क्योंकि तमाम खैर व बरकत व फैज इमा के जरिए आते हैं, और इस वक्त हमारे जमाने के इमाम के जरिए से वो फैज आता है, वो वास्ते फैजुल्लाह है। बगैर इमाम तसव्वुर नहीं हो सकता है कि हम दुआ मांगे और ऊपर से कबूल होकर डायरेक्ट किसी चैनल के जरिए से अलग थलग सेपरेट करके नऊज बिल्ला व नस्तजीर बिल्ला अदना तरीन रहमत खुदा भी हमारे शामिल हाल हो जाए। इसीलिए क्योंकि वासिते फैज हैं, क्योंकि इल्मुल्लाह है, इसलिए कि जो है ये बराह रास्त खुदा के परवरदा हैं या परवरिश करदा हैं या बनाए हुए हैं। इमाम ने फरमाया सनाए ओ रब्बिना, वो खुदा के बराह रास्त परवरदिगार आलम ने हमें बनाया है और बराह रास्त हम वहां से लेते हैं। इसीलिए इमाम फरमाते थे कि देखें, ला तसअलूनी अन शैअन फी मा बैनकुम व बैन असा इल्ला अनबक्तकुम। नाजुल बलागा की शरह में भी हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया है, आज भी करते हैं थोड़ा बहुत। फरमाते देखो मुझसे कोई भी चीज पूछ लेना, ला तसअलूनी अन शैअन, कोई भी कुछ भी मतलब कुछ भी। मसलन एक इंजीनियर साहब हैं, फर्ज करें बिल्डिंग बनानी है, इमाम से पूछे कि इमाम मुझे एक अच्छा आर्किटेक्ट, एक डिजाइन, एक मजबूत तरीन बिल्डिंग जो जिलजिले को सह सके, तूफानों को बर्दाश्त कर सके, मुझे आप इंजीनियरिंग दे दें। इमाम दे देते। ये तो नॉर्मल चीजें, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, खासकर हमारे जो यूथ है उनके लिए। मसलन एक आदमी आगे कहता, इमाम जो है ना मुझे, मैंने रॉकेट बनाना है, मरीख में मैं जाके आबाद होना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को भी वहां लेके जाना चाहता हूँ, जमीन में नहीं रहना चाहता, आप बताएं मैं मरीख में जाके कैसे रह सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है मरीख में जाने की, रहने की, और सैारे सितारे वगैरह वगैरह। इमाम बता देते कि किस तरह रॉकेट, जो हम बता देते। मसलन जैसे कि इमाम ये बताते हैं कि दुनिया में रहकर जन्नत का हुसूल कैसे हो सकता है, दुनिया में रहकर मलकूत में कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे आंखों से पर्दे हट सकते हैं, ये इमाम बता सकते हैं, ये सिखा सकते हैं। तो ये सब भी सिखा, ये तो इजी काम है, मुश्किल काम नहीं है। एक तो ये मतलब है। फिर फरमाया देखें, फीमा बैनकुम व बैन असा, फरमाया तुम से लेकर, यानी उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनसे लेकर कयामत तक की जो कुछ हालात होने वाले हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। मसलन उस वक्त इमाम आली मकाम से कोई ये पूछे कि या इमाम आप ये बताएं कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा या नहीं करेगा, या ये प्रोपेगेंडा हो रहा है इस वक्त, शयातीन मिलकर शोर मचा रहे हैं रशिया को दबाने के लिए, उसको क्रश करने के लिए, उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, हकीकत क्या है? उस वक्त कोई पूछता तो इमाम बता देते हकीकत क्या है, होगा या हमें भी नहीं पता होगा या नहीं होगा, लेकिन इमाम से पूछते तो बता देते, क्योंकि इमाम के लिए जमीन और जमान तो नहीं है ना। इंशाल्लाह जब आयरलैंड में 19 को अगर खुदा ने तौफीक दी तो ये जमान और जमीन के हवाले से थोड़ी डिटेल में हमने जाना है, अगर वक्त मिला तो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन भी है। तो इमाम बता देते, इल्ला अंबातुकुम, मैं बता देता, यानी मतलब क्या है इसका, यानी तबीयत नेचर जिसको आप कहते हैं कायनात से ऊपर मेरा वजूद है, मेरा मकाम जमान टाइम, जमीन स्पेस कहें आप, मकान कहें, इससे आगे है। यानी तुम्हारे लिए 13 रजब को आया हूं। असल में 13 रजब 30 आमुल फील के हाथी वाले वाक़े के 30 साल के बाद हुज़ूर पाक की बेसत से 10 साल पहले रजब की 13 तारीख को तुम्हारे लिए तो जाहिरी तौर पर मैं दुनिया में आया हूँ, लेकिन ये जमान महदूद नहीं है। अली 13 रजब से पहले दुनिया में नहीं थे। माफ करना, थोड़े से संगीन सवालात की तरफ, वादियों की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों की मारिफत बढ़ती जा रही है तो थोड़ा थोड़ा सा आस्ता जाना चाहिए ना। हमें भी हमारी मारिफत में भी इजाफा होता है। ज़ाहिल मौला है, ये मौला की वजूद मलकूती है, मौला की तरफ अदना तरीन से इशारे हैं। इस हद तक तो हक बनता है ना हमारे मारिफत का। तो क्या 13 रजब से पहले मौलाए कायनात नहीं थे? जमान में महदूद थे, मकान में महदूद थे, मौला कूफे में थे, मक्के में नहीं थे, यूरोप में नहीं थे। मौला आज से 1300 कुछ साल पहले थे, मतलब अभी नहीं है। 13 रजब 30 आमुल फील से पहले नहीं थे। जमान मकान, मौला जमान मकान की कैद से बालातर हैं। इन्हें तुम्हारे लिए मैं 13 रजब को आया, 30 आमुल फील तुम्हारे लिए कल नहीं आया है, तुम्हारे लिए परसों अभी आने वाला है, तुम्हारे लिए मार्च का महीना भी इंटर नहीं हुआ, शाबान नहीं आया, तुम लोग तैयारियां कर रहे हो जश्न शाबान के लिए। मेरे लिए शाबान हो, रमजान हो, 2022 हो, 2023 हो, ये सब कुछ कोई मीनिंग नहीं रखता है। क्यों? अली जमानो मकान से बालातर है। जब मैं जमानो मकान से ऊपर हूं, तबीयत और नेचर भी मेरे कंट्रोल में मुट्ठी की तरह हैं, मेरी मुट्ठी में ऐसे हैं, मैं अपनी मुट्ठी जिस तरह है, इस तरह कायनात का टाइम भी, कायनात के डिस्टेंस भी, स्पेस भी, सब कुछ मेरे सामने, कब तक? कयामत। तो मैं हर कोई चीज आपको बता सकता हूँ, मुश्किल काम नहीं। आप महीने बदलने का वेट करते हो, साल बदलने का वेट करते हो, सदियां आई हैं जनरेशन टू जनरेशन, मेरे सामने सारी जनरेशन है। मैदान जंग में इसीलिए तो जब अटैक करता था तो सामने वाले के देखता था कि 7वीं पुश में, मतलब 700 ईयर्स के बाद एक अच्छा इंसान आने वाला है, तो मैं कहता भाई इसको ना मारो, 700 ईयर्स के बाद नेक आदमी ने आना है, उसका रास्ता क्यों रोका जाए? 700 ईयर्स, यस, हाँ, ये मौला अली अलैहिस्सलाम। बस मौला, मैं और आपने 13 रजब कोई जश्न मनाना है, जाहिर है हम जमानो मकान में महदूद हैं। हमारे लिए 30 आमुल फील हुजूर की, हुजूर पाक की बेसत से 10 साल पहले 13 रजब को मौला की विलादत हुई दुनिया में। तो मैं और आपके लिए आलम इमकान में मौला ने आना था, खुदा ने यही तरीका रखा था, अल्लाह ताला ने यही पसंद किया है कि एक बाप और माँ के जरिए से मौला तशरीफ लाए आलम इमकान में। इसका मतलब कि मौला कायनात 30 आमुल फील से नहीं थे पहले, मौलाए कायनात को उससे पहले का नहीं पता। नऊज़ु बिल्लाह व नस्तजीरु बिल्लाह। ये अल अलीउल आला, अल अलीउल आला के साथ मुत्तसिल हैं। खुदा की सिफात औलिया व हुस्ना व जमाल व जलाल की तजल्ली ये कामिल व अकमल व अतम हैं। कैसे जमान व मकान में महदूद हो सकते हैं? अच्छा, सिंपल करते हैं, रिपीट हो जाए, क्योंकि आप सामने होते तो शायद मुकर्रर वाली बातें भी हो जाती। दूसरे अल्फाज में मौला ये फरमाते, देखो तुमने अभी शादी नहीं की है, तुम्हारा अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, पोता तो दूर की बात है, लेकिन मेरे लिए जो कुछ नहीं हुआ वो हो चुका है, क्योंकि जमाना वक्त तुम्हारे लिए है। अली जमाने से आगे हैं, अली मकान से आगे, अली जमान से आगे, अली ला जमान है और अली ला मकान है। ला मकान औज़ु बिल्लाह अल्लाह की सिफात में से हैं, इसलिए मुनासिब ये है कि हम यूं अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि गलत मीनिंग्स कोई न पहनाए कि अली ला मकान की तजल्ली, सिफात ला मकान की तजल्ली कामिल व अकमल व अतम है। जमीन पर तशरीफ लाए हैं तो लामकां और लाजमा का नुमाइंदा बनकर तशरीफ लाए हैं, और इसलिए जमान मकान से भी बालातर हैं। لہذا میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں، کوئی میرے لیے مشکل مقام نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے کچھ فضائل بیان کیے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ پر جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولا الموحدین امیر المومنین علیہ السلام کے نام مبارک کو لیتے ہوئے صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ مقام امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے علاوہ تمام انبیاء سے بالاتر ہے، یہ واضح بات ہے۔ قرآن مجید کی آیت وہیں جو سورہ، وہیں جو جناب ابراہیم والی ہے، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات والی آیت ہے، اس میں واضح ہے کہ دلیل ہے کہ امامت کا مقام نبوت عامہ سے ابو الانبیاء جناب ابراہیم نبوی ہونے کے باوجود مقام امامت ایک بلند مقام تھا۔ لہٰذا جو ہے اس میں میں مولا کائنات کی، اب بس آپ کی زحمتیں بھی تمام کروں گا، مولا کائنات کی خود ایک عظیم الشان روایت ہے، اس کا کچھ حصہ میں بیان کروں۔ آپ زیارات کے لیے بھی جاتے ہیں اور مولا کے ایک بہت ہی پرہیزگار متقی رازدار صحابی سعد بن سوہان کی مزار پر ضروراً جاتے ہوں گے انشاءاللہ۔ طویل روایت ہے، میں شارٹ کر کے مین جو چیزیں وہ بیان کروں۔ شب ضربت تھی، مولا جو ہے زخمی تھے، گھر کے اندر موجود تھے، دروازے پر ہجوم تھا آپ کے چاہنے والوں کا، اہل کوفہ کا، جن میں خاص آپ کے اصحاب بھی موجود تھے، اور گھر کے اندر اہل بیت کے علاوہ سب کو گھر سے نکالا گیا تھا اس کیفیت میں جب ابتدائی طور پہ مولا کو مسجد سے گھر میں شفٹ کیا گیا تھا۔ تو مولا کائنات نے کچھ ٹائم کے بعد مولا نے فرمایا کہ اب میرے چاہنے والوں کو آپ اندر آنے دے دو۔ جب اندر داخل ہوئے تو فرمایا، دیکھیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، میری طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے، بگڑتی جا رہی ہے، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اس وقت اور جو کچھ جاننا چاہتے ہو ابھی اور ابھی پوچھو مجھ سے، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ مجھے کھو دو۔ جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو یہیں ساسا بن سوہان نامی صحابی آگے بڑھا اور عرض کیا، گفتگو فرمائی ہے، میں کچھ حصے اس کے میں صرف بیان کروں گا اور عربی عبارت کے ساتھ بیان کروں گا۔ فرمایا، یا امیر المومنین انت افضل ام آدم ابو البشر، فرمایا اے امیر المومنین آپ افضل ہیں یا آدم جو کہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد محترم ہیں، وہ افضل ہیں۔ قال علی علیہ السلام تزکیت المرء نفسہ قبیح، وہی مولا کا مشہور جملہ، فرمایا دیکھے بات سنے سوہان، خود اپنے آپ تعریف کرنا جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری بات ہے، قبیح ہے۔ تو اب آپ نے سوال ایسا کیا کہ جہاں مجھے اپنی تعریف کرنی پڑے گی، تو کہا مجھے یہ تو یہ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ قال، لیکن علم کی حد تک، سمجھنے کی حد تک کے لیے غور سے سنیں، لیکن اللہ قال جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم جو ہے آپ لوگ جنت میں رہیں، لیکن خبردار تقرب ہذہ الشجرۃ، یہ مت کھانا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35۔ لیکن وہ کھا گئے، انہوں نے وہ غلطی کر ڈالی۔ اچھا یہ آدم ہے، اب سنو میرے بارے میں، انا اکثر الاشیاء اباحا لی وترکتها وما قاربتها، دیکھیں خدا نے مجھے گندم کھانے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ میں دنیا کو اتنا حقیر و پست سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر چیز میرے نزدیک ایک حقیر و پست چیز ہے، اس لیے جو ہے نا میں نے اپنی مرضی سے کبھی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر، مولا کب یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ شب ضربت، 63 سال پوری زندگی فرماتے ہیں، میں نے کبھی اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے روٹی نہیں کھائی، اس رب کی مرضی سے کھائی، جب جسم میں بالکل ظاہری اسباب نہ رہے تو اس حد کے لیے میں نے روٹی کھائی۔ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں، وہ گندم جس کی وجہ سے آدم کو نکالا گیا، اب خود معلوم ہے کون افضل ہے۔ پھر ساسا کہتے ہیں، انت افضل یا امیر المومنین ام نو افضل ہے اے میرے مولا یا آپ۔ قال علی، سنو ساسا، ان نوحا دعا الی قومہ وانا ما دعوت الی ظالم حق اللہ اکبر، یہ علی کی شخصیت ہے، خود اپنی زبانی فرماتے ہیں، دیکھیں नूह को जब उसकी कौम ने तंग किया ना, तो बदुआ शुरू कर दी अपनी कौम को, मुझे मेरे हक में दयालिमी हक थी, मेरे हक को मारा छीना, मेरे गले में रस्सी बांध दी, मेरी जोजा और नामूस की हद तक आ गए, मेरे घर पर हमला कर दिया, मुझे शहर में रहने नहीं दिया, लेकिन मैंने कभी इनके बद्दुआ नहीं की। सैदे कायनात से भी कहा कि ए अल्लाह की कनीज खातून, ए सैदतुन निसा, ए रसूल जादी, बद्दुआ न करना खुदा के लिए। और फिर फरमाते हैं वब्न नूह का ना काफिरा, नूह का बेटा काफिर हो गया आखिर में जाकर। वो अबनाई सैयदु शबाब अहले जन्ना, और मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार है, तो कौन अफजल हो गया। शबे जरबत की बातें है ये। वकाल अंत अफजल अम मूसा, मेरे मौला ये तो बताए ना कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं या आप अफजल हैं। फरमाते हैं इन अल्लाह तबारक व तआला अरसल मूसा इला फिरऔन इन्नी अखाफ अन यक्तल हत्ता قال الله لا تخاف اني لا يخاف لدى المرسلون। कह रहे हैं कि जब फिरौन की तरफ जनाब मूसा को भेजा, तो उस वक्त जनाब मूसा ने, कुरान मजीद की आयात है, सूरह कसस की आयत नंबर 33, सूरह नमल की आयत नंबर 10, जिनको जरूरत हो, तो फरमाया कि फरमाया इन अखाफ अन यक्तलनी, परवरदिगार देखे मैं अकेला जा रहा हूँ, मूसा ने फरमाया वो मुझे कत्ल कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, मिशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा। खुदा की तरफ से हुक्म आया मत डरो, तुम मेरे भेजे गए नबी हो, डरने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। अब फरमाते हैं, अब रही बात मेरी, अना मा खिफ्तुहीन व अरसलनी रसूलुल्लाह बितबलीग सूरतिल बरा अन अक्रा अलल कुरैश, मुझे जब अकेले कुरैश के सामने, मुशरिकीन के सामने, उनकी नंगी तलवारों के सामने सूरह तौबा या बराअत की जो है क़िरात के लिए भेजा, तो मैं बिल्कुल नहीं डरा, अकेले चला गया। इन्नी कुंतु क़त्लतु कसीरन मिन सनादीदिहिम, इसके बावजूद कि मैंने उनके बहुत से बड़ों बड़ों को मैंने तहतेक कर दिया था और मारा था, वज़हबतु, मैं चला गया अकेले अकेले, वक़रातु अलैहिम, मैंने उनके ऊपर उस सूरह को पढ़ा, वमा खिफ्तहुम, मैं बिल्कुल उनसे नहीं डरा। अब बताओ, और शब हिजरत, ये इससे बड़ी शुजात कहीं नहीं है। मैं मुकायसा करना नहीं चाहता, बस इशारा करता हूँ, क्योंकि मुझे मुकायसा करते इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है। अगरचे उलमा कहते भी हैं और करते भी हैं बाज़ औक़ात, कम से कम एकेडमिक बाउंड्रीज में, देखें तीरों के साये में, नेजों के साये में नमाज पढ़ना फिर भी आसान है जब उसको कंपेयर किया जाए नंगी तलवारों के साये में, 40 कबाइल के 40 गुंडों के नंगे तलवारें कत्ल के इरादों के सामने, बगैर किसी डिफेंस के, बगैर किसी वेपन के, बगैर किसी की घाड़ के, बगैर किसी ढाल के सोना, ये अजमत और शुजात की इंतहा है। तो शब हिजरत तलवारों के साये में मजे की नींद सोता रहा। ठीक है, मेरे बेटे ने करबला में नेजों के साये में नमाज कायम की और उसके बावफा असहाब डाल बनकर आगे खड़े हो गए। अजीजो, 13 रजब है और बस वक्त भी काफी हो चुका है और डिस्टेंस है, तो जाहिर है कि जश्न का जो एक खास बगरची, माशाल्लाह बच्चों ने भी और सब ने बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया, मौला कबूल करे। वासिते फैज़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आप सबको जजाए खैर दे, आप सबकी जो भी दुआएं हैं कबूल करें, मुंतजमीन की, बच्चों की। बस सिर्फ जो है मैं थोड़ा सा जो है इस रिवायत को कंप्लीट करूं, फिर सवाल किया, ईसा अफजल हैं, ईसा इब्न मरियम अफजल हैं या आप अफजल हैं। फरमाया ईसा कानत أمه في بيت المقدس فلما جاء وقت ولادتها سمعت قال آ। तो ये अहम जुमला मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इस विलादत के तमाम सिनारियों को खुद मौला कंप्लीट करते हैं। इस हिस्से में फरमा रहे हैं, देखे ईसा अलैहिस्सलाम जब उनकी पैदाइश का वक्त करीब आ गया, तो बैतुल मक़दस से फरमाया अख़रिजी हाज़ा बैतुल इबाद वला बैतुल विलादा, कहा कि देखें आप बाहर चले जाए, ये तो आप बच्चे तो यहाँ पैदा नहीं हो सकते, ये तो इबादत गाह है। وَأَنَا أُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَأُمِّي مَرِيَمَ مَا فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ لَمَّا قَرَّبَ وَدَعَا حَمْلُهَا। ये कौन फरमा रहे? मौला अली अलैहि सलाम। कौन अपनी पैदाइश की डिटेल बता रहे? खुद मौलाए कायनात। अब गौर से सुने कि मौलाए कायनात जो कुछ इरशाद फरमा रहे वो आपकी अपनी जबानी है। एक इशारा फिर करता जाऊं कि फरमाते हैं फलम्मा जा वक्तु विलादती हां समितु कायलन, जब मेरी पैदाइश का वक्त करीब आया तो मैंने खुद सुना। खैर कहते कि मेरी वालिदा अना उम्मी फातिमा बिनते असद लम्मा करब वदु हमलिहा कानत फिल हरमी, खाने काबे के करीब थी मेरी वालिदा जब हमल का वक्त आया था। फंशक हायतुल काबा, काबे की दीवार तो निसब हो गई। वसमितु काइलन यकूल, और मैंने सुना कि ये निदा आ रही थी। उदखुली फदखलत फी वसतिल बैत, करिए कि मेरी माँ को कहा जा रहा था कि तुम दाखिल हो जाओ अंदर, और मेरी माँ काबे में दाखिल हो गई। दाखिल होकर कहाँ रही, काबे के किसी कोने में, दरवाजे की ओड़ में, किसी सुतून के ओड़ में, वैसे तो सुतून कह रहे नहीं है, ये किसी ऐसी जगह में नहीं, फी वसतिल बैती, ठीक काबे के दरमियान। ये कौन फरमा रहे, मौलल मुआहिदीन अमीरुल मोमिनीन। दखलत फी वसतिल बैती, काबे के ठीक सेंटर में, दरमियान में, किसी कोने में नहीं, किसी दीवार की ओड़ में नहीं, यानी कि वहां पर जो है चली गई। फिर फरमाते हैं वह अनवलितु फीही, और मैं काबे के बीच में मेरी पैदाइश हुई। लैसा अहदुन हादिहिल फदीला, ये फदीलत में कोई सानी नहीं है, मेरा कोई दूसरा नहीं है मेरे अलावा। वला कबली, न मुझसे पहले कोई, वला बादी, न मेरे बाद कयामत तक कोई हो सकता है। सलामुल्लाहि अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए वासिते फैज मौला उम्मुल अबुल अइमा, मौला आपकी विलादत की रात है, आप मौलाए मुश्किल कुशा हैं, हम आपके मानने वाले हैं, हम आपके चाहने वाले हैं। मौला आज की रात आपके इस जश्न में आपके चाहने वाले इकट्ठे हैं, बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बाज मुल्कों में आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बाज में किसी हालत में हैं। मौला मुश्किल कुशा, ए वासिते फैज, ए अबुल अइमा, ए वो कि सनाए रब हैं बराह रास, खुदा ने जिनको बनाया है, खुदा से बराह रास लेते हैं। ए मेरे मौला व आका, सबकी दुआओं को अपनी सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबकी हाजात को कबूल फरमा। मखसूसन बाज ने इल्तिमास दुआ कहा है, हम आलम इमकान में हैं, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा बशर है, खुदा ने फरमाया कि हम लोग बड़े कमज़ोर हैं, सुई चुभती है तो हम चीख फरियाद करते हैं, हम इतने कमज़ोर हैं मौला, हमें यहाँ सुई की भी ज़रूरत है, छोटी छोटी मजबूरियाँ हमारी, छोटी छोटी ज़रूरतें हमें बिल्कुल जो है ज़मीन पे गिरा देती हैं। ऐ मुश्किल कुशा अली ये शेर है खुदा, सबकी मुश्किलात को हल फरमा। मखसूसन जिन्होंने इल्तिमास दुआ कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन जिम्मेदारी ली है तो मैं ये दुआ करता हूँ। मौला बाज तेरे चाहने वाले ऐसे हैं जो इस दियार गैर में रहते हैं और यहाँ रहने के जो कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरा नहीं हो चुके हैं और इसकी वजह से परेशान हैं। मौला बाज यहाँ रहते हैं जिन्होंने आपके पिसारे ग्रामी सईदुश्शोहदा का वास्ता देकर हमसे कहा है कि ज़रूर दुआ करना कि वो अपनी फैमिली से दूर हैं, फैमिली से कई सालों से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। मौला ये बहुत छोटी मुश्किलात हैं, मुश्किल कुशा के सामने ऐसी मुश्किलात पेश करना अच्छा तो नहीं लगता लेकिन क्या करें, हम ज़ईफ लोग हैं, कमज़ोर हैं, आप मुश्किल कुशा हैं, वासिते फैज़, मौला इन सब की मुश्किलात को हल फरमा। आपकी विलादत की रात है, खुशी की रात है, आपसे तवसुल करते हुए ये आंसू गम के नहीं हैं, आपके तवसुल व तकद्दस के आंसू हैं, आपके सामने गिरिया व जारी के आंसू हैं, आपके सामने आजजी व इंतिसारी के आंसू हैं, आपसे इश्क व मोहब्बत का जो एहसास रूह में मौजज़न करता है उसके आंसू हैं। परवरदिगारा मौलल मुआहिदीन अमीरुल मोमिनीन वासिते फैज़ुल्लाह सनाए व रब्बिल्लाह का वास्ता, जितने भी हाजरीन हैं, जो मुंतजमीन हैं, खासकर हमारे शकील भाई हैं जो हमेशा जो निज़ामत के प्रोग्राम संभालते हैं, बच्चे हैं जिन्होंने आशगाना अंदाज से जो है कसीदे पढ़े हैं, दीगर जितने जिन्होंने भी शिरकत की है, दामे दिरहमे सुखने कदमे, सबकी سب کی حاجات کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارا ہم ثنائے اور رب کے ماننے والے ہیں، ہم واسطے فیض کے ماننے والے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، معصیت کار ہیں، تھوڑے سے جو ہے کوتاہیاں کرتے ہیں، تو بخشنے والا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، مہربان ہے۔ اے مہربان پروردگار، اے علی کے رب، ہم سب کے جملہ گناہانے کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ اذان محترم، آخر میں میں ایک یہ گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ مولائے کائنات کی سیرت کو ضرور مطالعہ کیجئے گا کہ آپ کی ذاتی زندگی کیسے گزارتے تھے، آپ کی ترجیحات کیا تھی، مثلا مولا علی علیہ السلام کی پرائیورٹیز کیا تھی، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، جاگنے میں، چلنے میں، دوسروں سے ملتے ہوئے آپ کا جو بیہیویئر جس کو آپ کہتے ہیں، رویہ کیسا تھا، سلوک کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، مثلا مخالف کے ساتھ کیسا رویہ تھا، دشمن کے ساتھ، آپ کے پاس معیارات کیا تھے کسی بھی چیز کے، دوستی کے، دشمنی کے، مخالفتوں کے، مثلا آپ کی جو اخلاقیات جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے وہ کس قسم کی اخلاقیات تھی، کیسا برتاؤ تھا، آپ کی سوشل اخلاقیات کیا تھی، رویے کیسے تھے، اور اس طرح کی جو چیزیں، کمزور لوگوں سے آپ کیسے پیش آتے تھے، کمزور لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ اتراتے تھے، اپنے آپ کو بڑائی دکھاتے تھے، کوئی پتہ چلے کسی کی مجبوری ہے، کوئی پریشان ہے، یا کوئی کمزور ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی اسیر ہے، کوئی قیدی ہے، اچھا حتیٰ جو مسلم سوسائٹی میں غیر مسلم رہتے تھے، حتیٰ اپنے قاتل کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، یہ مطالعہ کیجئے گا ضرور۔ آج ہم نے فضائل کے اوپر وقت گزارا، قاتل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ حسنین علیہ السلام کو کھلے صفاف نصیحت کے ساتھ دیکھیں، یہ ہماری قید میں ہیں، ایک مہربانی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ کھانے پینے کا خیال رکھنا، کسی قید و بند نہ ہو کا احساس نہ ہو جائے، اذیت نہیں دینا اس کو، ٹھیک ہے قاتل ہے، جو حکم شرعی ہے وہ نافذ کریں، لیکن جب تک قید میں ہیں آپ اس کو اور کوئی تنگ نہ کرے، مناسب کھانے کا خیال رکھیں، رحم دلی اور نرم دلی کے ساتھ پیش آئیں۔ لہٰذا جو ہے یہ ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہونا آج ہمارے لیے پہلے سے بہت زیادہ ضروری ہے، ہماری نسل، نئی نسل کے لیے۔ پروردگار عالم، میں شکر گزار بھی ہوں منتظمین کے، باب العلم سوسائٹی کے، عزا خانہ زہرا کے، اور تمام مومنین و مومنات کے، ورکنگ ڈیز ہیں، ورکنگ ڈیز میں اس کے باوجود آپ لوگ آن لائن شریک ہوئے ہیں، یہ آپ کا عشق مولا ہے، عشق واسطۂ فیض اللہ ہیں، اور یقیناً واجرکم علی اللہ واجرکم علی مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔